नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
They all constitute an important threats for us.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविट्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।